This is the Epilogue Audio Experience. Nine XM Song Secret.
आपने कभी गौर किया है कि कुछ गाने कभी भी प्ले कर दो, कहीं भी प्ले कर दो, आपका सारा फोकस उधर ही चला जाता है। वो गाने चार्ट बस्टर्स पे टॉप पे हो या ना हो, उनका इम्प्रेशन ना लॉन्ग लास्टिंग है। हाय, माय नेम इज शेफाली और आप सुन रहे हैं 9XM सॉन्ग सीक्रेट ऑन ईपीलॉग मीडिया। एंड यू कैन लिसन ऑन ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट और ऑन योर फेवरेट पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग एप्स। इस पॉडकास्ट में हम आपके लिए गाने के पीछे की इंटरेस्टिंग कहानियां लाए हैं। अच्छा, ये कहानियां ऐसे ही हवा में नहीं सुनाऊंगी। इनफैक्ट ये कहानी तो मैं आपको सीधा उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगी जिन्होंने इस गाने को बनाया है, चाहे वो कंपोजर्स हो, सिंगर्स हो या फिर लिरिसिस्ट। वो बताएंगे कि कैसे वो गाने जिन्होंने उनकी लाइफ को बदल कर रख दिया, उनकी लाइफ में कैसे आए, कैसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो से हमारे म्यूजिक सिस्टम में आए, लेडी संगीत और घर तक आ पहुंचे। आज मेरे साथ शो पे वो लिरिसिस्ट है जिनके शब्दों में बीट है और शायद इसीलिए इनके गानों की बीट पे थिरकने पे मजबूर हो जाते हैं। बीट पे बूटी, यस यू गेस्ड इट राइट, हमारे साथ है वायु जिन्होंने बनो तेरा स्वैगर, बीट पे बूटी, नागिन और ना जाने कितने कमाल के गाने बनाए। सबसे पहले जिस गाने की मैं बात करने वाली हूँ, मैंने अपनी फैमिली में कितने फंक्शंस पे डांस परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि वो गाना है ही इतना अच्छा। एंड आई एम सो श्योर आपने भी एक ना एक बार उस गाने पे डांस परफॉर्मेंस जरूर दी होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट बनो तेरा स्वैगर। वायु, सबसे पहले टेल मी, बनो तेरा स्वैगर आपके दिमाग में कैसे आया?
हाय शेफाली, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर पॉडकास्ट। एंड या बनो तेरा स्वैगर वर्ड कैसे आया? स्वैगर वर्ड तो मैं उस समय यूज कर रहा था, मैंने नया नया सुना था शायद, या फिर पता नहीं कहाँ से, मैं अक्सर स्वैगर स्वैगर काफी यूज करता था। और ये मुझे ब्रीफ आई थी मेरे पास इस गाने के लिए जब मैं लेह में था, लेह में ट्रैवल कर, लद्दाख लेह वहाँ ट्रैवल कर रहा था मैं, तब मेरे पास ब्रीफ आई थी। और गाना बनाने के लिए मेरा पहली बार किसी फिल्म के लिए पिच कर रहा था मैं, एज ए कंपोजर लिरिसिस्ट कोई गाना पिच कर रहा था। तो मैं कोशिश यही कर रहा था कि कोई, मतलब मैं चाहता था कि गाना कुछ इंटरेस्टिंग हो। और तनु वर्स मनु रिटर्न्स के लिए बनाना था, तो काफ़ी चैलेंजिंग था, काफ़ी प्रेशर भी था कि कुछ अच्छा ही बनाना है, कि साडी गली जैसा कोई गाना, जो काम साडी गली ने किया वैसा कुछ काम कर सके, ऐसा कोई गाना चाहिए था। तो ऐसी एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि कोई फोक सॉन्ग लेके, शादी का फोक सॉन्ग लेके उसको कुछ नया करो, उसको कुछ नया बनाओ। तो बन्नो तेरी अखिया सुरमेदानी करके गाना था और उसको, मतलब एक फोक सॉन्ग था, तो उसको मुझे लगा कि मैं इसको नया कैसे कर सकता हूँ, क्या नया कर सकता हूँ इसके बारे में। तो मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा, मेरे ख्याल से एक डेढ़ हफ्ते तक सोचा था मैंने कि मैं क्या करूँगा। और करते करते फिर एक अचानक से गाते गाते बाइक चला रहा था मैं, ले से वापस लौट रहा था मनाली की तरफ, लौटते लौटते बाइक के रास्ते में ही मेरे को अचानक से गाते गाते बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, और अचानक से ऐसा लगा कि सुन के कि हाँ स्कैनिंग भी प्रॉपर है इसकी और बिल्कुल फिट हो रहा है। और ये ऐसा है कि बनो तेरी अखियां सुरमेदानी, जो पुरानी जनरेशन जानती है जिस गाने को, वो भी रिलेट कर पाएंगे और नई जनरेशन इस वर्ड के साथ रिलेट कर पाएगी, ये सोच के मैंने इस गाने को पिच किया। हालांकि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि ये गाना एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि स्वैगर और सेक्सी दो वर्ड ऐसे थे, जो स्वैगर एक तो बहुत ही ज़्यादा नया वर्ड था और सेक्सी थोड़ा सा रिस्की ऐसे वर्ड्स था, तो इसका डर था। लेकिन फिर आई वेंट विद माय गट फीलिंग, आई प्रेजेंटेड द सॉन्ग एज इट वाज। एंड तीन दिन तक तो आनंद सर का कोई रिप्लाई नहीं आया था, लेकिन उसके बाद जब रिप्लाई आया तो ये आया कि भाई स्क्रिप्ट में चेंजेस किए जा रहे हैं गाने को फिट करने के लिए। तो या दैट वाज माय फर्स्ट एवर सॉन्ग व्हिच डिड सो वेल एंड दैट एक्चुअली गॉट मी इनटू films and proper music composition and writing.
Of course, it did so well ki aaj bhi aap kisi club mein chale jao na, banno tera swagger play hoga hi hoga. Vayu, aapka ek aur gana aaya jiske release ke baad ek challenge chala tha, and that challenge I'm talking about is beat pe booty challenge. Kya aapne bhi aisa koi challenge accept kiya, and ye beat pe booty aapke dimag mein aaya kaise? How did this happen?
दिमाग में वर्ड्स कैसे आते हैं ये तो पता नहीं, लग पता आई डोंट नो मैन, मतलब मेरे ख्याल से मैं अपने आप को रोकता नहीं हूँ, कोई भी वर्ड आते हैं तो मैं उनको, जो भी वर्ड्स मुझे नए ऐसे लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, मैं उनको साथ में कोशिश करता हूँ कि मैं उसको कैसे यूज कर सकूँ. बट बीट पे बूटी एज ए फ्रेज वॉज लाइक समथिंग विच कॉट सचिन जिगर्स अटेंशन. चैलेंज भी हुआ था, चैलेंज मेरे पास भी आया था, हम लोगों को भी कहा था कि चैलेंज है एक्सेप्ट करो और करो. बट आई गॉट टू लेफ्ट फीट सो आई जस्ट कुड नॉट डांस. सो इट वॉज लाइक इफ यू सी द वीडियो आई होप नोबडी गेट्स टू सी दैट वीडियो. आई होप इट्स नॉट ऑन इंटरनेट एनीमोर. बट या तो मैं सचिन जिगर से पहली बार मिला था. मेरे ख्याल से पहली बार उनके साथ सेशन करने गया था. मुझे कॉल आया था बन्नो तेरा स्वागर के बाद. जिगर ने कॉल किया था और बुलाया था कि आओ हमारे साथ भी थोड़ा लिखने की कोशिश करो. तो उस समय मैं बन्नो तेरा स्वागर के बाद मैं कोशिश यही करता, मतलब मैं चाहता था कि मैं लिरिक्स राइटिंग ना करूँ, कंपोजिशन के साथ लिरिक्स करूँ, जो मैं तनिष्क के साथ करने की कोशिश कर रहा था. लेकिन सचिन जिगर ने बुलाया और सचिन जिगर का म्यूजिक काफ़ी अच्छा लगता था मुझे, काफ़ी उनके गाने मुझे पसंद थे. तो मैंने सोचा कि चलो विल गिव इट अ ट्राई, लेट्स सी इफ आई कैन राइट टू समथिंग टू देयर सेटिस्फैक्शन व्हिच दे लाइक. तो जब मैं वहाँ पहुँचा था तो मेरे पास ये कुछ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि कितने फ्रेजेस कुछ कुछ है क्या इंटरेस्टिंग हुक के लिए. तो मैंने कुछ ऐसे पढ़ के बताए थे और बीट पे बूटी मैंने अपने पास लिख के रखा हुआ था. तो मैंने पूछा ये क्या है बीट पे बूटी. तो मैंने कहा कि अब बीट पे बूटी मतलब बीट पे बूटी ही शेक करो और व्हाटएवर यू करो. तो उन्हें जब वी जस्ट स्टार्टेड जैमिंग ऑन इट द बीट पे बूटी, बीट पे बूटी, बीट पे बूटी, ऐसे करके थोड़ा सा आइडिया सा आया. अगले दिन फिर उन्होंने वापस बुलाया. जब मैं वापस गया तो उन्होंने पूरा ट्रैक रेडी करके रखा था. उसे बीट पे बूटी और उन्होंने वो भी बना रखा था, एज ए हुक यूज भी किया हुआ था. फिर उन्होंने मुझे थोड़ी कॉम्पोजिशन दी, उसने कहा इस पर लिखो. वो लिख भी दिया मैंने. उसके बाद उन्होंने कहा कि एक स्क्रैच रिकॉर्ड भी कर दो.
अच्छा.
मैंने स्क्रैच रिकॉर्ड भी कर दिया अपनी आवाज में. और मुझे पता ही नहीं था यार कि वो उन्होंने तो मतलब आगे चल के वो मेरी आवाज में ही चला गया आगे. डिस्को दीवानी, फायर इन द पानी, मतलब काफी, और लिखने में काफी मजा आया था मेरे को. बीट पे बूटी मैंने जो मन में आया जैसा जैसा सूझा वैसे, जो मतलब जितने भी मैं खुराफात कर सकता था खुराफात सारे कर डाले मैंने उस गाने को लिखने में. जैसे एक टिपिकल बॉलीवुड सॉन्ग में फिबोनाची वाला स्पाइरल तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग, पर मैंने डाल दिया और उन्होंने ले भी लिया. और फिर उसके बाद सबसे मजे की बात है कि आगे डायरेक्टर ने भी उसको अप्रूव कर दिया और फिर उसमें गाना भी आ गया और चैलेंज भी हो गया. तो वो मतलब बन्नो तेरा स्वागर के बाद ठीक ठीक बाद अगला गाना बीट पे बूटी था मेरा. और इट डिड सो वेल, आई वाज आई कुड नॉट बिलीव इट कि गाना इतना अच्छा मतलब इट विल डू सो वेल. हालांकि टाइगर श्रॉफ और जैकलिन का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है उसमें, लेकिन एज अ सॉन्ग मुझे मतलब, और काफ़ी अलग कैसे तरह का सॉन्ग था, काफ़ी अलग तरह की बीट थी, काफ़ी अलग तरह का सॉन्ग था स्ट्रक्चर वाइज भी. और फिर भी उसके बाद भी काफ़ी अच्छा किया उसने, मतलब इट वॉज नॉट ए टिपिकल बॉलीवुड सॉन्ग. सो मैं यही मानता हूँ शायद कि अगर आप ऑनेस्ट काम करें तो आप अच्छा काम करते हैं, आप हिट बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर तो आप. और सचिन जिगर हैज गॉट दिस थिंग कि वो कमर्शियल तो करते ही हैं, लेकिन कमर्शियल के साथ साथ दे जस्ट गेट समथिंग, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, वेरी रिलीविंग फॉर मी टू वर्क विद देम. उसके बाद से फिर तो उनके साथ मेरा एसोसिएशन बना ही हुआ है, आज तक बना हुआ है. तो अभी चल रहा है. और बीट पे बूटी आया कैसे ये तो मुझे नहीं पता, मतलब मेरे ख्याल से जो मैं शब्द लिखता था फ्रेजेस लिख के रखे थे, पर मेरे ख्याल से ये उनकी नज़र थी कि उन्होंने इस फ्रेज़ को उठाया. मैंने और भी कुछ फ्रेजेस सुनाए थे उनको और उन्होंने बीट पे बूटी उठाया और उसके बाद उसको डेवलप किया. तो मेरे ख्याल से इसका श्रेय उनको भी जाता है जितना मुझे जाना चाहिए, उतना ही उनको भी जाता है और मेरे ख्याल ज्यादा जाता है क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा गाना बनाया.
वायु, ये जो आप अलग अलग वर्ड्स लेके गाने बनाते हैं ये साइड तो हमने आपका देख लिया, लेकिन आपका एक रोमांटिक साइड भी है जो हमें पता चला मेरे लिए तुम काफी हो सॉन्ग के रिलीज के बाद, जिसे लिखा है आपने ऑफ कोर्स और जिसे गाया है आयुष्मान खुराना ने. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. ये सॉन्ग कैसे हुआ, इसके पीछे के ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं?
या मैं तो मानता हूँ मेरे एक ही साइड है, मतलब एक ही साइड है मेरा, सिंपल गाने लिखता हूँ मैं. मतलब मैं तो अपने आप को प्रॉपर लिरिसिस्ट भी नहीं मानता. मैं तो लोगों को कहता हूँ मैं सॉन्ग राइटर हूँ, लिरिसिस्ट होना भी मुश्किल होता है, पोएट भी नहीं मानता मैं अपने आप को, सॉन्ग राइटर ही. तो ये मेरे लिए तुम काफ़ी होगी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. मतलब शुभ मंगल ज़्यादा सावधान में गाना काफ़ी अच्छी तरह से फिट होता है, लेकिन ये गाना बनाया नहीं था शुभ मंगल ज़्यादा सावधान के लिए मैंने. ये गाना बहुत पहले मेरे ख्याल 2014 में कभी मुझे एक ब्रीफ आई थी टीवी चैनल से, वैलेंटाइंस डे पे वो कोई गाना करना चाहते थे. तो ब्रीफ थी, 10 दिन का डेडलाइन थी, लेकिन मैं 7 दिन तक कुछ नहीं किया और 8वें दिन मैंने ये गाना बनाया था मेरे लिए तुम काफ़ी हो. एक बीट ऐसे पकड़ ली थी, ढक ढक चक ढक ढक चक, इस पर करके मैंने लिखना शुरू किया. मेरे ख्याल से उस दिन मैंने लिखा गाना और जब मैंने लिख के भेजा उनको गाना तो उन्होंने कहा कि भाई तुम बहुत लेट हो गए हो, मतलब गाना तुम्हारी डेडलाइन तुम मिस कर चुके हो, तो तुम अब रहने ही दो क्योंकि अब गाना कब बनेगा और कब उस पर शूट होगा. तो गाना पड़ा का पड़ा रह गया. तो मैंने फिर सोचा कि इस गाने को मैं अपने सिंगल के लिए यूज़ करूंगा जब भी मैं अपना सिंगल निकालूंगा, मतलब बातें करो मेरा सिंगल आया अब जाके। लेकिन उस समय मैंने सोचा था कि जब भी मैं अपना सिंगल निकालूंगा तो ये गाने इस गाने से निकालूंगा, मुझे काफ़ी पसंद था वो गाना, पर वो भी नहीं हुआ। उस पर भी काफ़ी वक्त लग गया। उसके बाद ये गाना मेरे पास पड़ा रहा, काफ़ी लोगों के पास लेके गया मैं इस गाने को, कई लोगों ने ट्राई भी किया, बहुत लोगों को पसंद भी था ये गाना, मतलब काफ़ी पसंद था। तो ये गाना मैंने फिर आनंद सर को भी सुनाया था, तो हितेश ने भी गाना सुना, और हितेश ने सुना और हितेश को मैंने गाना उन्होंने रख ही लिया गाना। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मैं अपनी फिल्म में डाल रहा हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो मैंने कहा ठीक है आपकी मर्जी, आपको अच्छा लग रहा है गाना तो आप डाल लीजिए। फिर मुझे तो ये भी कहानी सुनने को मिली कि हितेश केवलिया ने गाने को सुन सुन के फिल्म को काफ़ी काफ़ी शेपअप किया, काफ़ी उनके बीच की जो मोहब्बत थी आयुष्मान और जितेंद्र की इस फिल्म में, उसमें काफ़ी उन्होंने कहा कि इस गाने से उनको काफ़ी हेल्प मिली। तो ये सब भी मतलब सुनने में आया मुझे। और आयुष्मान को मैंने, मतलब मैं तो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता नहीं हूँ, कुछ भी प्रोडक्शन भी नहीं करता मैं, तो मैंने टेबल बजा के ढक ढक चक ढक ढक चक करके मैंने आयुष्मान को भी गाना सुनाया, और आयुष्मान को भी गाना काफ़ी पसंद आया। और फिर यही डिसाइड हुआ कि आयुष्मान इस गाने को गाएंगे, और उन्होंने गाया और फिर उसके बाद काफ़ी पसंद किया गया। तो यही थी उसकी कहानी। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि शुभ मंगल मंगल ज़्यादा सावधान जैसी फिल्म के साथ ये गाना जुड़ पाया, क्योंकि जब गाना मैंने लिखा भी था तब भी मैंने यही सोच कर लिखा था कि प्यार का कोई जेंडर नहीं होता, प्यार की कोई जात नहीं होती, तो गाना जो होना चाहिए वो सिर्फ प्यार के बारे में बात करना चाहिए, मतलब जो साथ होता है कंपेनियनशिप, उसकी बात करनी चाहिए गाने को। और वही उसी ख्याल को दिमाग में रखते हुए मैंने पूरा गाना लिखा था। और सोचिए शुभ मंगल ज़्यादा सावधान जैसी फिल्म के साथ वो गाना जुड़ गया, जिस मतलब मेरे ख्याल से किस्मत लेके पैदा होते हैं हर हर गाना अपना, तो अपनी किस्मत लेके पैदा हुआ था ये गाना कि इसको इस फिल्म के साथ ही जुड़ना था, और वो हो गया। और आयुष्मान की आवाज़ भी काफ़ी क्यूट लगी, काफ़ी अच्छी लगी, और काफ़ी सराहा गया इस गाने को। तो आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी फॉर लविंग द सॉन्ग सो मच। सो या दैट वॉज द स्टोरी ऑफ दिस सॉन्ग।
What an interesting story Vayu, and like you just mentioned about Baate Karo, मैं आपसे बस यही पूछने वाली थी कि आपका first single आया Baate Karo, in just 3 months it has already crossed 1.5 crore views. Baate Karo कैसे हुआ, क्या है इसके पीछे के interesting secrets जो आप हमसे share करना चाहते हैं?
बातें करो कि कोई ऐसी बहुत स्पेशल स्टोरी नहीं है।
ओके,
एज ए सॉन्ग राइटर काफ़ी समय काफ़ी अक्सर मैं गाने सोचता रहता हूँ, अक्सर मैं काफ़ी मेरे काफ़ी ख्याल मुझे गानों में ही आते हैं। तो ये उनमें से एक गाना था जो एक सर्दी की सुबह मैंने अचानक, मेरा एक दोस्त गिटार ट्यून कर रहा था और उसके ट्यून करते करते ही मैं ये गाना की धुन में दिमाग में बजने लगी, और थोड़ा बहुत लिखा मैंने उसको, और वहीं पर बैठे बैठे हमने इसका मुखड़ा बना लिया था। तो ये गाना तो वैसे ही बना था कि इसको बनना था, शायद निकल के आना था, पर हाँ ये मेरा पहला सिंगल होगा ये बात मुझे, मतलब मैंने सोचा नहीं था। ये सोनी का कॉल था कि उन्होंने इसको एज माय फर्स्ट सिंगल दे लॉन्च दिस वन, एंड देन दे गॉट डारगाई टू थिंक अबाउट द वीडियो, जुगाड़ मोशन पिक्चर, शानी प्रणीत शानी हैज डन द डायरेक्शन ऑफ द वीडियो। तो ये इस तरह से बनेगा गाना पहला सिंगल, ये मैंने नहीं सोचा था। ये कुछ इंटरेस्टिंग था क्योंकि काफ़ी सारे गाने थे जो मैं, और मैंने, मेरे साथ क्या हुआ है कि बॉलीवुड में ना मैं अक्सर क्वॉक, मैंने जितने इसके पहले, इस साल 2020 से पहले मैं जितने गाने आए हैं वो सब क्वॉक के ऊपर है, मतलब सब क्वॉक ही सॉन्ग्स हैं, और सारे गानों में ही कुछ ना कुछ ऐसा है कि थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स करो। वो तो मुझे अक्सर ब्रीफ ही मुझे इस तरह से मिलने लगी थी कि भाई मैं हिंदी में गाना लिख दूँ अगर पूरा का पूरा, तो लोग यही बोलते थे कि थोड़ा इंग्लिश वर्ड डालो, थोड़ा इंग्लिश वर्ड इधर डालो, वायु मेक इट मोर वायु। तो आई एम थैंकफुल दैट दिस ईयर 2020 दिस हैज़ बीन एन ईयर जब मुझे, जब मैं सच में वो गाने निकाल के ला पाया हूँ जो मैं, जो जो ऐसा कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो ऑनेस्ट सॉन्ग्स हैं, जो सीधे सीधे बात है कहने की, अगर उनको इंग्लिश की ज़रूरत है तो है, नहीं तो नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये वैसा गाना था, और ये बात काफ़ी समय तक डिस्कस होती रही सोनी म्यूजिक में भी कौन सा गाना होना चाहिए पहला सिंगल, और कुछ लोगों का भरोसा था इस गाने पे, तो वैभव पानी ने इसको प्रोड्यूस किया और काफ़ी सुंदर प्रोड्यूस किया। तो उसके बाद तो फिर हमने सोच ही लिया कि बातें करो ही करेंगे, और देखिए फिर आ गया, और अभी लोगों को पसंद आ रहा है, मतलब इंस्टाग्राम पे जितने मैसेजेस और जितनी स्टोरीज मैं रोज़ शेयर कर रहा हूँ, मुझे लगा था एक डेढ़ हफ्ते तक करूँगा बस हो गया, उसके बाद उससे ज़्यादा क्या होगा, पर अभी तक आ रही है स्टोरीज, अभी तक आ रहे हैं मैसेजेस मुझे, पर्सनल मैसेजेस जिसमें लोग तारीफ कर रहे हैं। तो आई एम ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पॉन्स मैम, I mean, I never had imagined that people will react so beautifully to this song. And और भी गानों पे काम कर रहा हूँ, आगे चल के देखते हैं उस पे क्या reactions आते हैं, लेकिन बातें करेंगे तब तक।
ऑफ कोर्स हम बहुत सारी बातें करेंगे वायु. अब मैं जिस गाने के बारे में आपसे पूछने वाली हूँ, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट. आई डोंट नो मैंने वो गाना लूप पे लगा के कितनी बार सुना है. एंड जिस तरह से आपने उस गाने में अपना वायु रस और कॉकीनेस डाला है, वी ऑल लव्ड इट. आई एम टॉकिंग अबाउट नागिन, जिसे गाया है आस्था गिल एंड अकासा सिंह ने, लिखा है ऑफ कोर्स आपने. नागिन गाने के पीछे के ऐसे कौन से इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं?
So it's basically it's Nagin din gin gin gin, like Nagin is counting days.
Yeah.
और story तो ऐसे कोई special है नहीं. Sony Music के office में बैठा हुआ था, आस्था यही थी.
Okay.
और पूरी आए हुए थे, पूरी on the beat. तो वो आया हुआ था एम्स्टरडैम से यहाँ पे जैम करने के लिए. सॉन्ग कैंप चल रहा था तो वो खड़ा था, और मेरे को अभिषेक है सोनी म्यूजिक में, अभिषेक पाटिल, उसने ऐसे ही बैठे बैठे, हम लोग सीढ़ी बैठे हुए थे बाहर ऑफिस के बाहर, तो अभिषेक ने मुझसे कहा कि कोई एक वर्ड का कोई ऐसा हुक वाला कोई गाना सोच.
अच्छा.
तो मेरे दिमाग में ऐसे ही रैंडम सा थॉट आया कि इट्स बीन लॉन्ग तेरी बीन सुने परदेसी नागिन दिन गिन 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 मर गई. तो ऐसे जरा सा मतलब ऐसे ही अचानक से कभी कभी ऐसे खुराफाती थॉट था ये, ऐसा सोचा नहीं था मैंने. और जब मैंने दिमाग में ये थॉट आया तो मैंने एज एन एग्जाम्पल बोला अभिषेक को कि ऐसा कोई थॉट चलेगा क्या, मतलब ऐसा कुछ करूँ क्या, मतलब ऐसी बहुत रैंडम सा थॉट था, बहुत ही वाइल्ड सा थॉट था ये. तो अभिषेक को सुनाया, फिर पूरी को सुनाया, तो पूरी स्टार्टेड वाइबिंग विद इट. तो उसको तो काफ़ी पसंद आ गया, तो फिर हमने सोचा कि चलो इस गाने को डेवलप करते हैं. आस्था यही थी, आस्था से रिकॉर्ड करवा लिया था, फिर आकाशा बाद में जुड़ी हैं. पर उस समय आस्था थी यहाँ पे, तो उनके साथ रिकॉर्ड भी कर लिया. और बाकी गाने को लिखते समय मैंने दिमाग में ये रखा था कि नागिन जो वर्ड है, जैसे कई ट्रक्स के पीछे लिखा रहता है पहाड़ी नागिन. और नागिन ऐसे कॉन्सेप्ट ऑल्सो इज वेरी देसी, काफ़ी देसी कॉन्सेप्ट है नागिन का ना, इच्छाधारी नागिन की बात जो करते हैं. तो लिखते समय मैंने पूरे गाने की जो जो स्टाइलिंग थी वो मैंने ट्रक, जो देसी ट्रक में जो राइटिंग होती है उससे इंस्पायर होके, मतलब एक तरह से मैंने उसका थॉट्स और उसके वर्ड्स मैंने वहीं से लिए, और बाकी थोड़ा बहुत अर्बनाइज करने के लिए उसको आधा इंग्लिश में भी लिखा, थोड़ा बहुत इंग्लिश में जो चीज़ें इंग्लिश में आ रही थी उसको इंग्लिश में ही रखी. इसमें भी काफ़ी हालांकि टग ऑफ वॉर हुआ था कि कौन सी लाइन रखनी है कौन सी नहीं रखनी है, पर मैंने जैसा लिखा था वैसा का वैसा ही पूरा का पूरा लड़ भिड़ के मैंने वैसा का वैसा ही आगे बढ़ा दिया. और फिर बस वही देसी ट्रक वाली राइटिंग और वो मिला के फिर आकाशा भी इन्वॉल्व हो गई. और फिर हमने मिलके गाना किया, और फिर जब गाना रिलीज हो रहा था तो मेरा नाम, मतलब यूजली कंपोजर लिरिसिस्ट का नाम ऐसे डालते नहीं है, पर ना सिर्फ गाने में नाम डाला गया सबसे पहले मेरा, उसके बाद मुझे वीडियो में भी डाला गया. तो आई एम थैंकफुल टू सोनी म्यूजिक फॉर दैट, फॉर एनकरेजिंग मी सो मच. तो ये थी गाने, इस गाने की कहानी. और बाकी मेरे ख्याल से गाना The way it did was also amazing. I mean, जब रिलीज हुआ था, जिस दिन पहले दिन रिलीज हुआ था उस दिन तो मैं बड़ा घबराया हुआ था, मतलब गाना चलेगा कि नहीं चलेगा, पर जो चला ये गाना अभी तक रुक ही नहीं रहा है. तो मतलब I'm thankful to God also कि he has been by my side and helped me achieve this. So yeah, this was the story of Nagin.
Thank you so much, Vayu. It was such a pleasure having you on my show, 9XM Song Secret. And thank you for sharing such amazing secrets behind your lovely songs. And jaate jaate, a small request. If you can give a small message to all the listeners of 9XM, will be really great.
Thank you so much for having me, Shefali. Bahut maza aaya. Aur listeners ko kya message doon yaar main? Ek hi message hai ki लॉकडाउन चल रहा था तो मेरे ख्याल से बहुत लंबी प्लेलिस्ट बन गई होगी अब तक गानों की. तो उसमें से आपने बेस्ट गाने जो क्यूरेट किए होंगे, हो सकता है आपको इस साल के बेस्ट गाने मिल गए हों. तो आई होप यू हैविंग फन एंड कीप हैविंग फन, कीप लिसनिंग टू गुड म्यूजिक एंड कीप लिसनिंग टू शेफाली. हैव फन, टेक केयर.
Thank you for listening. Hope you enjoyed this episode of 9XM Song Secret, which is available on EPlog Media and other leading podcast platforms like Apple Podcast, Spotify, JioSaavn and more. And do subscribe and rate us 5 stars on Apple Podcasts. Nine XM Song Secret.